ओम शांति। संगम युग पर हम सभी चारों युगों में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं भगवान की नजर हम पे पड़ी है। हम सोचते हैं कि जब भगवान ने इस संसार पर अपनी नजर दौड़ाई होगी ये ढूंढने के लिए, ये देखने के लिए कि इस धरती पर कौन ऐसी महान आत्माएं हैं, कौन ऐसे योग्य बच्चे हैं जो मेरे काम आ सकते हैं, मुझे नया संसार रचना है, कौन कुर्बानी करेंगे अपनी, तो उसकी नजर किस पर पड़ी? हम सब पर पड़ी। उसने देखा कि ये आत्माएं हैं जिनमें पवित्रता के बीज, कुर्बानी की भावनाएं हैं, सेवा भाव है, जो संसार को बदलने में मुझे मदद कर सकते हैं। तो हम सभी को आकर उसने अपनी भुजाएं बना लिया, अपना संगार बना दिया, और जिन्होंने उसके कार्य में लगने का संकल्प रखा, जिन्होंने अपने मन में ये शुभ भावना रखी कि हम भगवान के काम आ जाएं, ऐसा श्रेष्ठ अवसर हमें प्राप्त हो, तो बाबा ने उन सबको अनेक वरदान दे दिए, अनेक शक्तियां गिफ्ट के रूप में भी दे दी है। तो हम सब ऐसी पुण्य आत्माएं और ऐसा सक मदद करते हैं। हम सब तो आकर ही को उसने रही है, जिनका श्रृंगार स्वयं वो करता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिन्हें संपूर्ण बनाने की चिंता उसे भी है। अगर हमें भी हो जाए, जिस दिन हमें भी संपूर्ण बनने की उतनी ही इच्छा हो जाए जितनी इच्छा बाबा को हमें संपूर्ण बनाने की है, जब हम दोनों की इच्छा समान हो जाए तो हम संपूर्णता की ओर तेजी से चल पड़ेंगे। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद रखते हुए हमें अपने से बात करनी है, हमें अपने को समझा देना है कि ये संगम युग का समय ईश्वरीय मौजों का समय है, ईश्वरीय मौजों का युग है। इस जैसा ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय मौज चारों युगों में देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, तो भक्तों को भी प्राप्त नहीं होती। तो हम स्वयं को ईश्वरीय मौज में रखना सीखें। चाहे कुछ भी हो, किसी के भी साथ हमें रहना पड़े, चाहे कुछ भी कार्य हमें करना पड़े, लेकिन हमसे मौज न छूटे। मौज आनंद, इस जीवन की खुशी, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस पर हमारा अधिकार है। बाबा की संपूर्ण खुशी, उसकी संपूर्ण मौज और शक्तियां, पवित्रता हमारे लिए है। उसका जो कुछ है वो हमारा है। हम अपने संगम युग के इन क्षणों को मौज में व्यतीत करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर न देखें, क्योंकि संसार में दिखाई बहुत कुछ देता है। हमारा लक्ष्य महान है, और किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को कुर्बानी करनी ही पड़ती है। किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग और वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा। और जब मनुष्य किसी महान कार्य की ओर चलता है तो उसे सुनना भी बहुत पड़ता है। इसलिए सुनने की शक्ति भी धारण करनी है, सुनने के लिए पहले से ही तैयार रहना है। इस सत्य को जानते हुए कि आगे बढ़ना है तो सुनना तो पड़ेगा ही। जो सुन नहीं सके वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपनी मेंटेलिटी इस तरह की बना लें कि सुनना है, सुनाने वाले सुनाते रह जाएं और हम अपनी रेस में दौड़कर आगे बढ़ जाएं। सुनाने वाले देखते ही रह जाएं कि हम सुनाते ही रह गए और जिन्हें सुना रहे थे उन्होंने हमारी सुनी नहीं, वो आगे निकल गए। ऐसी अपनी मानसिक अवस्था सुनने की भी शक्ति का निर्धारण है के लिए सुनने पहले से कलयुग के बीच में रह रहे हैं। भले ही हम संगम युग पर हैं, परंतु कलयुग का माहौल, कलयुगी मनुष्यों के साथ काम करना पड़ता है सबको, बाहर धंधे नौकरी, उनका ही प्रभाव, उनका ही संग, हमें ऐसा कहें किसी किसी को 24 घंटे रहता है। और कई लोग शिकायत करते हैं कि ऐसे माहौल में रहते हुए, ऐसे संग में रहते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करना बहुत कठिन है। लगता तो कठिन है, परंतु अगर हम इन सब चीजों को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें और इस चैलेंज को हमें फेस करना है, इस चैलेंज के होते हुए हमें इससे पार निकल जाना है, इस चैलेंज पर हमें विजय प्राप्त करनी है, इस माहौल से हमें प्रभावित नहीं होना है, इन मनुष्यों से प्रभावित होने के बजाय इन पर हमें अपना प्रभाव डालना है, अगर ऐसी दृढ़ता हम अपने अंदर ले आएं, तो ये वातावरण हम पर हावी नहीं रहेगा, मनुष्यों के संग का असर हम पर नहीं होगा, हमारा असर ही उन पर होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा संग सर्वशक्तिवान का है, उनका संग माया का है, हमारा संग शक्तिशाली है, उनका संग कमजोर है। जिनका संग शक्तिशाली हो उनका ही प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो हम ये सोचने की बजाय कि दूसरों के संग का असर हम पे पड़ता है, हम ये सोचें कि क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है इसलिए हमारे संग का रंग दूसरों पर पड़ेगा, हमें डालना है, हम समर्थ हैं इस कार्य के लिए। तो हम अपने महान लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखें और ऐसा अपने से विचार करते रहें कि हमारा कर्म क्षेत्र, कर्म के साथी और संबंधी हमें इस महान लक्ष्य को भुला न दें। नॉर्मल जीवन में अगर हम देखें तो मनुष्य प्राय अपने महान लक्ष्य को भूला रहता है। अनेक बातों की स्मृति उसे महान लक्ष्य को विस्मृत कराए रखती है और यही कारण है कि उसके कदम धीमे हो जाते हैं या जीवन में रुकावट आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को बार बार रिवाइज करना, याद करना आवश्यक है। लक्ष्य बहुत महान है, संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना, जो कुछ 5000 साल में खोया है, खाया है, खर्च किया है, उसे फिर से प्राप्त करना 2-4 साल में ऐसा कहें है तो कठिन काम, परंतु क्योंकि हमें योग का इतना श्रेष्ठ ज्ञान स्मृति को विशक्ति कराए रखती है और यही और है कारण के कदुष्ट को पा सकते हैं। जिन जिन अभ्यासों से हम शक्तियां भर सकते हैं, जिन जिन स्मृतियों से हमारे अंदर देवी गुणों की धारणा आ सकती है, जिन जिन संकल्पों से हमारी प्योरिटी बढ़ सकती है, जैसा परिवर्तन करने से हम अपने संस्कारों को सरल बना सकते हैं, वैसा सब कुछ हमें इस समय करना चाहिए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस जीवन के लिए, लक्ष्य भूले नहीं, और लक्ष्य को पाने की इच्छा दृढ़ हो, इच्छा के साथ लक्ष्य को पाने में जो कुछ भी त्याग करना पड़े, कुर्बानी करनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हों। तो हम निरंतर कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म हमें निरंतर प्रभावित कर रहा है, कर्म ज्यादा समय होता है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, हाथों पैरों से भी हम कर्म करते हैं, बुद्धि और मन से भी हम कर्म करते हैं। तो हम ऐसे कहें हमारी दिनचर्या का अधिकतम समय कर्म क्षेत्र पर गुजरता है। अगर हम कर्म योगी नहीं बनेंगे तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा जब हम बैठकर योग करें। कर्म योगी बनना इस जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहली चीज कर्म योग के बिना हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म हमें निरंतर बांध रहे हैं। पाप कर्म तो बांधते ही हैं मनुष्य को, लेकिन अच्छे कर्म भी आसक्त करके बांध देते हैं। अगर हम कर्म योगी नहीं तो कर्म हमें बांधते जाएंगे, हमारा बंधन बढ़ता जाएगा और हमारी मंजिल और दूर होती जाएगी। दूसरी चीज, कर्म योग के बिना हम कर्मातीत स्थिति को नहीं पा सकते। बहुत बहुत आवश्यक है, ये बाबा के ही महावाक्य हैं। बैठकर चाहे हम कितना भी योग कर लें, किसी व्यक्ति ने बैठकर 4 घंटे भी योग कर लिया हो, बहुत शक्तिशाली योग किया हो, और बाकी 12 घंटे वो कर्म क्षेत्र में योग से बिल्कुल अलग रहा हो, तो 4 घंटे की जमा की हुई शक्ति 12 घंटे में खर्च हो जाएगी, बैलेंस 0 पर आ जाएगा। इसलिए आत्मा को आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होगा। तो आवश्यक है कि कर्म करते हुए हमारा योग रहे, कर्म करते हमारा संबंध बाबा से रहे, कर्म करते हुए हमें आत्मिक स्मृति रहे, स्वमान की स्मृति रहे, ये स्मृति रहे कि बाबा हमारे साथ है, ये स्मृति रहे कि ये कर्म हमें किसने दिया है, भगवान ने निमित्त बनाया है हमें, अपने कार्यों की टेक हुई शर्मा की शक्ति 12 घंटे बाहर छोटे में खर्च जाएगी। हम बहुत अच्छे चिंतन में रहें, सांसारिक चिंतन से दूर रहें, मनुष्यों की आवाज से दूर रहें, ये स्थिति कर्म योग की स्थिति है। बड़े सरल शब्दों में बाबा कहते आए हैं, हाथ से कर्म करो, बुद्धि बाबा में लगी रहे। पैरों से संसार में चल रहे हो और बुद्धि सर्वशक्तिवान पर स्थिर हो। कानों से कुछ सुन रहे हो और बाबा से किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हो। ऐसे अभ्यास हमें बढ़ाने हैं। अभ्यास के द्वारा इन चीजों को सरल किया जा सकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर मन और बुद्धि कर्म में भी बहुत व्यस्त रहती है, और कहीं कहीं किसी के काम ऐसे भी हैं कि जिसमें संपूर्ण बुद्धि का उपयोग होता है, मन भी पूरा लग जाता है बुद्धि के साथ, तो योग होता ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा अभ्यास करें तो हम अपनी मन और बुद्धि को अलग अलग कर सकते हैं। किसी काम में हमें मन लगाना होता है तो बुद्धि को शिव बाबा से लगा दें, पर अधिकतर कामों में हमें बुद्धि लगानी होती है तो मन शिव बाबा में लगाए रखें। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अभ्यास के साथ साथ ये आवश्यक है कि कर्म हमें भारी न कर रहे हों। इसके लिए हम अपने जीवन में कर्मों के लिए एक विशेष दृष्टिकोण बनाएंगे, और वो दृष्टिकोण है कि हमारा ये जीवन एक खेल है, कर्म भी एक खेल है। बाबा कहा करते थे, ड्यूटी ऐसे करो जैसे डांस कर रहे हो। कर्म को खेल बना लो, जीवन को खेल मान लो, सहज भाव से कर्म करें। जिस एक विशेष बात की हमें जीवन में प्रैक्टिस करनी है वो है सहज भाव से कर्म करना। कर्म जब तेज होता है, कर्म जब ज्यादा होता है और समय कम होता है तो मनुष्य की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़नी तो चाहिए हाथ पैरों की, पर स्पीड बढ़ जाती है मन की। मनुष्य अपने मन की स्पीड को सारा दिन बढ़ाता रहता है। आप चेक कर सकते हैं, आपको कुछ भी जल्दी करने के लिए कह दिया जाए तो हाथों से तेज मन चलने लगेगा। हमें अभ्यास ये करना है कि मन कम चले, हाथ पैर तेज चलें। थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। हमें बहुत फायदा होगा अगर हम मन कम चलाएंगे, मन को फास्ट न होने देंगे। मन के संकल्प है स्पीड, इतनी तो बढ़ना चाहिए पैरों की, पर स्पीड और काम कम समय में पूर्ण हो जाएगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आपको ये कह दिया गया हो कि ये काम है, आधे घंटे में पूरा करना है, और आपने सोचा हो कि आधा घंटा तो बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी आपने वो काम करना शुरू कर दिया, हाथ पैर जल्दी चले, आप चलने जल्दी लगे, इधर से चीज उठाई उधर से उठाई, मन भी तेज चला, और आप देखेंगे कि वो काम 30 मिनट की बजाय 40 मिनट ले लेता है। आप थक भी जाएंगे, स्थिति भी नहीं रहेगी कुछ अच्छी, समय भी ज्यादा लगेगा। आप जरा ऐसा सोच लें कि ये काम हमें आधे घंटे में करना है, आधा घंटा तो हमारे पास है, वो तो कहीं जा नहीं रहा, हम धैर्यवत होके काम करेंगे, उतावलेपन से नहीं, और बिल्कुल अच्छी स्मृति में रहकर आप काम करें तो आप पाएंगे वो 30 मिनट का काम 25 में ही पूरा हो गया, 5 मिनट आपके बच जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमें अनुभव देगा कि धैर्य चित्त होकर काम करने से रॉयल्टी भी रहती है, काम बिगड़ता भी नहीं है, विघ्न भी नहीं आते, और हम योगयुक्त भी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उतावलेपन से काम करें, जल्दीबाजी में काम करें, जल्दी जल्दी सोचें, जल्दीबाजी से निर्णय लें, तो गड़बड़ भी बहुत होंगी काम में, विघ्न भी आएंगे और देर भी होगी। कई बार ऐसा होता है उतावलेपन में चीज हमारे पास ही रखी रहती है और हम दूर ढूंढते रहते हैं, और जब मन शांत होता है तो देखते हैं वो तो यही रखी है। तो हम जीवन को एक खेल बनाएंगे, एक बहुत सुंदर टॉपिक है लेकिन कर्म योग से जुड़ा हुआ है। सभी इस बात पर विचार करेंगे कि जीवन एक खेल है, और खेल में क्या होता है, हार और जीत दोनों, खेलने वाली दोनों टीम या हर व्यक्ति दोनों ही बातों के लिए तैयार रहता है कि खेल में जीत भी हो सकती है हार भी हो सकती है। यद्यपि लक्ष्य सभी का जीत का है, परंतु जब हार हो जाती है तो उसको भी स्वीकार किया जाता है। अगर हारने के बाद खिलाड़ी निराश हो जाएं तो क्या नुकसान होगा, आगे के लिए उमंग उत्साह समाप्त हो जाएगा, उनकी शक्ति क्षीण होती हुई नजर आएंगी, या आपस में संघर्ष हो जाएगा कि तेरे कारण हारे, तेरे कारण हारे, तुमने गलती की, तुमने ठीक नहीं खेला। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो हार को भी सहज स्वीकार कर लेते हैं। खेल आनंद के लिए होता है, हार जीत तो उसके दो पहलू हैं। भले ही आज हार जीत इंपॉर्टेंट पहलू बन गए हैं, पर वास्तव में खेल की शुरुआत आनंद के लिए है, तो को भी उसका स्वीकार किया जाता। अगर सोच रहे हैं तो इस जीवन में हार और जीत, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, मान और अपमान, निंदा स्तुति सब होंगे ही, ये मानकर निगेटिव चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीत की हमारी इच्छा है, लाभ की हमारी इच्छा है, जीवन में सदा सफलता हो ये हम सब चाहते हैं, पर जब ऐसा न हो तो भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अगर हम अपने को समझा लें, ऐसी ट्रेनिंग दे दें कि हरेक हार नई जीत के लिए द्वार खोलती है, हरेक हार हमें कुछ अनुभव देके जाती है, हर हार हमारा टीचर बनकर जाती है। हार होकर चली गई, पास हो गई, पीछे निकल गई, हम उसे पकड़ के न रखें। अगर हम निराश हैं, अगर हम हार के प्रभाव से युक्त हैं लंबे समय तक, तो अगली हार भी होना संभव है। और जो व्यक्ति हार को भूलकर, लोस को भूलकर, निंदा को भूलकर आगे निकल जाता है, ये भी उसे छोड़ देती हैं, उसकी जीत होने लगती है, उसे सफलता होने लगती है। तो जीवन एक खेल है, इसको हम खेल बनाएंगे और खेल जैसा इसमें आनंद लेंगे। जीवन आनंद के लिए है, ये स्लोगन हमें अपने पास रख लेना चाहिए। बल्कि एक शब्द इसमें और जोड़ लें, हमारा ये जीवन ईश्वरीय आनंद के लिए है, क्योंकि आनंद की खोज संसार में लोग विकारों में, साधनों में, धन संपत्ति में, खाने पीने में कर रहे हैं, परंतु उनमें कितना आनंद है ये हम सब जानते हैं। अल्पकालीन आनंद, अभी आनंद और खुशी, अभी नष्ट। तो हमारा जीवन ईश्वरीय सुखों के लिए है, ईश्वरीय आनंद के लिए है, इसलिए इसमें हार और जीत दोनों को ही हमें स्वीकार करके ऐसी अपनी मेंटेलिटी बनानी है कि जीत हमें जितना आनंद दे, हार भी उतनी ही खुशी दे, क्योंकि हार हमारे जीवन के लिए जीत के द्वार खोलने के लिए आई है। बाबा ने भी कहा कभी, हर बात में कल्याण है, सुनी है ना ये बात सदा ही, हर अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने कहा हमें ये कहीं कहीं कल्याणकारी दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ स्वार्थ है, हमारी कुछ कामना है इसमें पाने की, कुछ देखने की, केवल हम अपने लिए सोच रहे हैं। हो सकता है जो हमें अपने लिए कल्याणकारी दिखाई दे रहा हो वो दूसरे अनुयायियों के लिए है। बाबा भी कहा कर बात हर भव के कल्याण के लिए बना है, ऐसा सोचकर एक बात और हमें अपने जीवन में इसमें ख्याल रखनी चाहिए कि हम सब जी रहे हैं कलयुग के अंत में, संगम युग का भी अंत, और संसार के लिए या जो भाई बहने बाहर रहे हैं उनके लिए कलयुग का अंत। तो कई शिकायत किया करते हैं कि लोग आज कैसे हो गए हैं, सब भ्रष्टाचारी, धोखा देते हैं, किस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, चारों ओर बेईमानी हो रही है, कोई भी व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता, बच्चा बाप की नहीं मान रहा, बड़ों का सम्मान नहीं रहा, सब इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की। तो मैं कहा करता हूं कि कलयुग के अंत में इसके अलावा और क्या होगा, जब कलयुग अपनी बिल्कुल अंतिम परछाइयां छोड़ रहा हो, बिल्कुल अंतिम, पाप की अंतिम चरम सीमा, गिरावट की अंतिम चरम सीमा, तब कितनी अच्छाई हो सकती है संसार में। फिर भी हम देखते हैं संसार में बहुत अच्छाई है, अच्छाइयों की भी कमी नहीं, अच्छे लोग भी यहां बहुत हैं। कलयुग में भी ऐसी अच्छाई है तो सतयुग में कितना सुखद माहौल होगा। इसलिए जो परिस्थिति, विघन, समस्याएं, बुराई, निगेटिविटी है, वो तो है ही और बढ़ेगी ही, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सोच करके ये क्यों है, ये सोच करके ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चे मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं, ये सोचकर स्वयं को परेशान करने की जरूरत नहीं। ये सब है, हो रहा है और यही होना है, ऐसा जानकर इनमें परेशान होने की बजाय इनका सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना है। कर्म के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज हमें जाननी चाहिए। बाबा ने कर्मातीत अवस्था की बहुत अच्छी व्याख्या की है। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के परिणाम से मुक्त और कर्म के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से मुक्त। कर्म हमें प्रभावित करता है, अच्छा कर्म हुआ, सफलता हुई, हम बहुत खुश होते हैं, सफलता न हुई, हम अपनी खुशी को खो देते हैं। तो सच्चे योगी वो जो दोनों से प्रभावित रहें, उनकी खुशी का आधार कर्म की सफलता नहीं, क्या होना चाहिए, हमारी खुशी का आधार ईश्वरीय प्राप्तियां, हमारे अपने अनुभव, मिले हुए अखुट खजाने। कर्म में तो सफलता भी है, असफलता भी है, तो दोनों के प्रभाव से जब आत्मा प्रभाव हमें पता है, कर्म हुआ, अच्छा करता हुआ, सफलता हुई, एक है कर्म का प्रभाव, कर्म हम कर रहे हैं उसी के चिंतन में हैं, किसी कर्म ने हमको भारी किया हुआ है, करते करते भी कोई काम भारी है, उसने हमारी सारी शक्ति, सारा अटेंशन, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति सारी खींची हुई है अपनी ओर, उससे प्रभावित होकर भी हम सारा दिन चलते हैं। इसको और सहज रूप में इस तरह जाना जा सकता है कि जो कुछ हम देखते हैं उससे प्रभावित रहते हैं, जो कुछ सुनते हैं उससे प्रभावित रहते हैं, जो कर्म करते हैं उससे भी प्रभावित रहते हैं, उनका सूक्ष्म प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। लेकिन योगी देखते हुए उसके प्रभाव से मुक्त, अर्थात देखते हुए वो इसे नहीं देख रहा, सुनते हुए वो व्यर्थ सुनता ही नहीं तो उसके प्रभाव से मुक्त, बोलना उसका बिल्कुल स्वच्छ है, डिवाइन है, गलत बोला नहीं जाता जिसका कोई बुरा प्रभाव हो स्वयं पर, तो कर्म के प्रभाव से भी मुक्त, और कर्म का जैसा भी परिणाम मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या करना चाहिए? सब बाबा पर समर्पित। हमें अपने मन में पहले से ये भावना बैठा लेनी है कि हम बाबा के लिए हैं, जो कर्म हमें मिला है वो बाबा से मिला है, वो बाबा का है, उसका परिणाम भी उसका ही है। तो जैसा भी परिणाम हमारे सामने आए वो सच्चे दिल से समर्पित कर दिया। हालांकि इसके लिए काफी अच्छी बुद्धि, विशाल दृष्टिकोण, बहुत समर्पण मेहता की आवश्यकता है। कर्म हम सच्चे दिल से कर रहे हो, बहुत मेहनत से हमने कोई काम किया हो, लेकिन लास्ट में जाकर असफलता मिल जाए, 10 दिन लगाए हो, बहुत मेहनत करके आपने कोई झांकी सजाई हो, और लास्ट में आकर जो बड़े हैं वो कह दें अच्छी नहीं बनी, आप रात को भी जागे हो, भोजन भी आपने छोड़ा हो, और कह दिया जाए अच्छी नहीं बनी, मजा नहीं आई जी, इसको देखकर लोग क्या कहेंगे, उस टाइम क्या किया जाता है? या तो कहेंगे लो तुम बना लो, हम तो चले, गुस्सा करके, या ठंडे हो जाएंगे बाकी भी, या मन में सोच लेंगे कि आज के बाद कभी ये धंधे नहीं करेंगे, इससे तो ज्ञान योग अच्छा था, टाइम वेस्ट कर दिया 10 दिन और मिली ग्लानी। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमने सच्चे दिल से कर्म किया, और सच्चे दिल से कर्म करने से क्या हुआ, हमारा श्रेष्ठ भाग भी बना, हमारा समय भी सफल हुआ, अब जो भी परिणाम है वो बाबा को समर्पित, हल्का कर दें अपने को तो ये कला हो जाएगी जो हमें निराश नहीं होने देगी जीवन में, उमड़ा करके देखिए बुरे कर्म तो मनुष्य को बांधते ही हैं, परंतु अच्छे कर्म भी बांधते हैं। देखा आपने अच्छे कर्म बांधते हुए कैसे बांधते हैं? किसी व्यक्ति को कोर्स कराने की ड्यूटी मिली हुई हो और उसने 100 व्यक्तियों को कोर्स कराया, बड़ा अच्छा लगा उसे भी, दूसरों को भी, 100 में से 50 स्टूडेंट बन गए हो, नाम भी हुआ हो बहुत, भाई फलाने ने कोर्स कराया, सेवा में इतनी वृद्धि हो गई। और मान लो कल उसे कहा जाए भाई तुम ये कोर्स देने की ड्यूटी छोड़ दो, दूसरी एक नई बहन आई है उसको दे दी जाए, उसको भी चांस मिलना चाहिए, तुम और कोई सेवा ले लो, तो क्या स्थिति होगी? छोड़ने के लिए उसको तैयार नहीं होंगे। अगर छुड़ा दी गई तो न जाने क्या क्या संकल्प निराशा के और भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं मन की खुशी को गुम कर देंगी। ये हुआ कि श्रेष्ठ कर्म ने आत्मा को बांध लिया। और क्यों बांध लिया? संकल्प क्या था पीछे? कि मैं कर रहा हूं, मैंने अच्छा कोर्स दिया, इसलिए 50 स्टूडेंट क्लास में बढ़ गए। और बाबा क्या कहता है कि तुम ही सब कर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था ऊपर बैठ के, मैं भी तो कर रहा था कुछ, मैंने टच किया आत्माओं को, तुम्हारे पास भेजा था कि बस तीर लगा दो, बाकी तो सब काम मैंने किया है। तो इस तरह मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म भी बांध लेते हैं। तो सच्चे योगियों को ये ध्यान रखना है कि कर्म उलझाने ना लगें, इस तरह हम में से कई आत्माएं सेवाओं के बंधन में बंध गई हैं और सेवा करते करते सेवाओं ने इतना उलझा दिया है कि योग युक्त स्थिति नहीं रही, सेवा संघर्ष बन गया। इसलिए बाबा ने कहा, सेवाओं में स्वार्थ भावना ही सबसे बड़ी बाधा है, विघ्न है। तो जिनको कर्मातीत होना है उनको इन सब से मुक्त होकर ही चलना है। न अच्छे कर्म बांधें और बुरे कर्मों से तो हमें सदा ही मुक्त रहना ही है। अब जब हम और आगे चलते हैं, अब मैं थोड़ी सी बातों पर आ जाऊं गृहस्थ में रहने वालों की। तो जो आसपास सब हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं और लोग हैं, उनका प्रभाव स्थिति पर पड़ता है। उसके लिए विशेषकर हम सभी को दो बातों की प्रैक्टिस रखनी है। आप सभी एक अभ्यास करें अपने अपने घरों में कि अपने सारे परिवार को सामने देखते हुए बार बार ये प्रैक्टिस करें कि ये आत्मा हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई हैं, ये नहीं, आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम सब आत्माओं का मिलन हुआ है इस समय इस घर में। इससे पहले हमारे परिवार में कोई और थे, उससे पहले कुछ और आत्माओं का ये परिवार था। परिवार बदलते आए हैं, आत्माएं बदलती आई हैं। ये हमारा अंतिम संगठन है परिवार का। अब हम सब फिर भी छूट जाएंगे और वापस चले जाएंगे। फिर पहले जन्म में एक दूसरा परिवार हमारे साथ होगा। इस तरह के चिंतन के द्वारा एक तो अपनी वृत्ति को आत्मिक बनाएं, दूसरा घर में रहते हुए माताएं एक स्वमान ले लें, बहुत काम आएगा वो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं और घर है मेरा मंदिर। अब घर मंदिर है तो इष्ट देवी का ही ये काम है कि घर को मंदिर बनाकर रखे। अगर इष्ट देवी क्रोध करेगी तो भक्तों का क्या हाल होगा? देख लें अगर भक्त कि इष्ट देवी तो हमारी गुस्सा करती है, तो अपने को इष्ट देवी समझने से अनेक धारणाएं जीवन में स्वतः ही आ जाएंगी। कई प्रश्न करते हैं कि देवी गुणों की धारणाओं के लिए स्वमान कौन सा है? इष्ट देव, इष्ट देवी। चिंतन करें इस पर। इष्ट देवियों के दर्शन करने भक्त आते हैं, आपने देखा होगा, आप में से भी कई करते रहे होंगे कि कुछ काम कराने जा रहे तो कहेंगे पहले मंदिर में देवी के दर्शन करके चलो तो काम सफल हो जाएगा। और अगर काम सफल न हुआ तो लोग क्या कहते हैं कि आज सवेरे सवेरे पता नहीं किसका मुंह देखा था। तो हमारा मुंह ऐसा हो, हमारा चेहरा ऐसा हो इष्ट देव देवियों जैसा, जिसका दर्शन करके लोगों के काम सफल हो जाएं। ऐसा ना हो क्रोध से भरा, चिड़चिड़ेपन से भरा, बुरी भावनाओं से भरा हुआ, परचिंतन से भरा हुआ, जिसको देखकर लोगों के विघ्न बढ़ जाएं। तो ऐसा इष्ट देव देवी स्वरूप हमें अपनी दिनचर्या में एक दो बार इमर्ज रखना है अपना, उस पर चिंतन करना। और भाई लोग विशेष करके ये अभ्यास और अनुभव करके देखें कि बाहर फील्ड में रहते हुए अगर एक दो बार भी इस स्मृति को रख लें कि मैं एक महान आत्मा हूं, तो इसका कर्म पर क्या प्रभाव होगा ये रोज प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जब भी आप अपने घर से किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो ये पक्का नियम कर लो कि बैठकर बाबा को योग लगाना है 3 मिनट अच्छी तरह से। रिक्वेस्ट नहीं करनी बाबा से कि बाबा हम ये काम करने जा रहे, मदद करना हमारी, बल्कि बाबा को साथ लेके चलना है और 3 स्वमान को अपनी स्मृति में लाना है। मैं एक महान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं विघ्न विनाशक हूं। आप अनुभव करेंगे कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई विघ्न आने वाला होगा वो नष्ट हो जाएगा, सफलता प्राप्त होगी और महानात्मा की स्मृति से दूसरों पर बहुत अच्छी छाप पड़ेगी। इस स्वमान के साथ मैं एक बात और जोड़ दूं कि दूसरों को भी अगर हम स्वमान की नजर से देखेंगे, स्वमान की दो नजर हो सकती हैं, एक ये आत्माएं हैं और दूसरा ये महानात्माएं हैं। आत्माओं के साथ हम ये जोड़ लें कि ये सभी भगवान के बच्चे हैं, मैं महानात्मा हूं और ये सब भगवान के बच्चे हैं। इसका प्रभाव तब आपको बहुत दिखाई देगा जब आप दूसरों से मिलते हैं, तो आप मिलनसार बन जाएंगे, आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, दूसरे आपकी राय को रिगार्ड देने लगेंगे और इस तरह आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी। ये आवश्यक है घरों में। अब एक और चीज, इस संसार में घर घर में आज कलयुग के अंत में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, संबंधों में तनाव है, टकराव है। कलयुग के अंत में मैं ऐसा कहूंगा कि जो मां बाप हैं उनको अपने बच्चों से बहुत विवेक पूर्ण समझदारी युक्त व्यवहार करना चाहिए। उन्हें दिखाई देता है कि बच्चों पर कलयुग का प्रभाव है और बच्चे मां बाप इससे परेशान हो उठते हैं कि बच्चे किधर जा रहे हैं। वो उनको समझाते हैं, वो नहीं समझते, वो उन पे दबाव रखते हैं, प्रेशर में रखना चाहते हैं, उन पे दबाव रहता है, या तो वो उदास होते हैं या वो छुप छुप कर इधर उधर जाकर बुरे काम करते हैं। ऐसे में मां बाप को क्या करना चाहिए, बहुत गहरा टॉपिक है ये, थोड़े में हम कहेंगे, मां बाप की अगर स्थिति श्रेष्ठ हो तो उनकी वाणी का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। अगर उन्हें आत्मा देखकर बात की जाए, आत्मिक वृत्ति से उन्हें कुछ समझा जाए तो वो अवश्य सुनेंगे, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, मेरी क्यों नहीं मान रहे हैं, इस अहम के द्वारा अगर बात की जाएगी तो ये अहम उनके अंदर भी अहम को जागृत करेगा। वो भी कहेगा खुद तो हो गए बूढ़े, चले गए सत्संग में, हमें तो दुनिया का आनंद लेने दो, उनके मन में भी ये विचार चलेंगे। इसलिए जीवन में हमें ध्यान रखना, एक स्लोगन सभी बना लें कि कुछ बातों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, कुछ बातों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ बातों को हमें समाना पड़ेगा, कुछ को भुलाना पड़ेगा। चार ये शब्द हम याद रखेंगे। कुछ चीजों को हमें समा कर चलना है, देखना है और देखना है बस, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, ना हम कुछ कर सकते, करेंगे तो हमारी शक्तियां, हमारा टाइम वेस्ट होगा। कुछ चीजों के लिए हमें करना है, जिन चीजों को हम सुधार सकते हैं, जहां तक हमारी शक्तियां काम करती हैं, उन्हें हमें सुधारने के लिए अपनी शक्तियों का, अपने प्रभाव का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें इग्नोर कर देना है, देखना ही नहीं है, होने दो उनको, क्योंकि वो कलयुग का प्रभाव है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं भी आपस में जब संघर्ष होता है तो हमें विशेष रूप से जिन चीजों पर ध्यान देना है, अब उनकी चर्चा जरा सी हम कर लें, जो विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, वैसे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां कहीं आपस में थोड़ा बहुत संघर्ष या मनमुटाव होता है, हर मनुष्य अपनी उंगली दूसरों की ओर करता है, वो कहता है दोष इनका है, इनके कारण हमारे घर में अशांति है, ये सुधर जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए, ये किसी की मानते ही नहीं है, मान वो नहीं रहे, गलती वो कर रहे हैं और चिड़चिड़ापन हमें बढ़ रहा है, स्थिति हमारी बिगड़ रही है। उंगली जब तक दूसरों की ओर है, हमारी उंगली दूसरों की ओर, तो दूसरों की उंगली हमारी ओर, तो दोनों एक दूसरे की ओर उंगली करते रहेंगे। जब दोनों की ओर उंगली है तो सिद्ध है कि दोषी तो दोनों हैं, परंतु दोनों ही अपने दोष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कितना एक सुंदर आश्चर्य है, दोनों की गलती, दोनों एक दूसरे की ओर उंगली कर रहे हैं, दोनों ही बुद्धिमान हैं और दोनों ही अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। और जब तक गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा और शांति नहीं आएगी। तरीका है, बड़ा सुंदर साइकोलॉजिकल तरीका है, जो भी समझदार व्यक्ति हो वो उंगली दूसरे की ओर न करके अपनी उंगली अपनी ओर करे, चेक करे कि मेरी गलती कहां हुई, सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती को पकड़े। जैसे ही हम अपनी गलती को पहचानेंगे, हम पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी गलती को महसूस करने लगा है। दूसरे को उसकी गलती महसूस कराने का तरीका या तो है स्वमान की स्थिति, जब हम स्वमान में रहते हैं, अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, या हम स्वयं अपनी गलती को स्वीकार करें तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी गलती को स्वीकार करेगा और बात ठीक हो जाएगी। बाबा के शब्दों में, पहले स्वयं को परिवर्तित करो, दूसरे स्वतः ही बदल जाएंगे जब तुम बदलोगे। क्यों, कौन हो तुम? विश्व परिवर्तक, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज। तुम बदल जाओगे, दूसरे तो स्वतः ही बदल जाएंगे। आधार ही नहीं मजबूत हो रहा है तो वृक्ष कैसे मजबूत होगा? दूसरी चीज, संगठन में जब हम रहते हैं और ऐसी बातें होती हैं आपस में, एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवारों में भी एक दूसरे को पहचानते हैं, तो एक दूसरे के प्रति घृणा भाव हो जाता है। ऑफिस में, धंधों में, जो व्यक्ति साथ नहीं देता, जो व्यक्ति गिलानी करता है, उसके प्रति घृणा भाव रहता है। और हमें याद रखनी है दो बातें, जब तक हमारे मन में किसी के लिए भी घृणा है, इस संसार की किसी एक आत्मा के लिए भी घृणा होगी तो हमारा बुद्धि योग टूटता ही रहेगा। दूसरी चीज, अव्यक्त महावाक्य है कि तुम्हारे श्रेष्ठ और शक्तिशाली वाइब्रेशंस के सामने दीवार है घृणा। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी घृणा है तो वो तुम्हारी घृणा तुम्हारे वाइब्रेशंस के सामने दीवार बनकर खड़ी होती है और तुम्हारे वाइब्रेशंस दूसरों तक नहीं पहुंच पाते। नहीं तो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की सेवा बहुत बहुत जबरदस्त है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको रोकने की शक्ति है निगेटिव शक्ति, घृणा में। तो हम चेक कर लें कि हमारे मन में किसी के लिए घृणा भाव तो नहीं है। कितनों के लिए घृणा? इस भट्टी में आप अंतर्मुखी होकर चुपचाप बैठ जाएं और एक लिस्ट बना लें, किस किस के लिए हमारे मन में घृणा भाव है। कई निकल जाएंगे, किसी के पास 10 की लिस्ट होगी, किसी के पास 20 की, किसी के पास 50 की भी हो सकती है। कुछ तो ऐसे हैं जिसे कोई भी अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में, जिसको देखेंगे वही खराब। कई लोग ऐसा अपने मुख से बोलते हैं, सब बेकार हैं, मैं अच्छा और सब बेकार। खुद के लिए भी कहीं कहीं शुभ भावना नहीं रहती, अपने को बहुत बुरा और बहुत गिरा हुआ और दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो घृणा भाव होने से दूसरा नुकसान, भावनाएं बदल जाती हैं। हम एक बात सदा ही कहते रहे, देखते रहे, अनुभव करते रहे कि हमारी अपनी भावनाएं दूसरे के व्यवहार का कारण हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अपने अंदर ही कुछ निगेटिव भावनाएं हो गई हैं। मनुष्य की भावनाएं उसे बहुत दुख देती हैं, अच्छी भावनाएं सुख देती हैं और बुरी भावनाएं सबसे ज्यादा दुख देती हैं, अंदर को सुखा देती हैं, अंदर की खुशी को छीन लेती हैं। मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा वो क्यों उदास है। इसका एक बहुत बड़ा कारण अंदर में छुपी हुई दुर्भावनाएं। तो हम अपनी भावनाओं को भी श्रेष्ठ करें। हम पहली क्लास में कह आए हैं, हमें सब प्रिय लगें, सब अच्छे लगें, ऐसा अगर हम अपने जीवन में इन कुछ थोड़ी सी धारणाओं को अपनाएंगे तो हम कर्मयोगी बन जाएंगे। सरलता आपको याद रहे, बहुत सहज जीवन जीना है, हर परिस्थिति में सहज। सरलता के बारे में बाबा के बहुत बहुत सुंदर महावाक्य हैं, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अलौकिक अनुभव होंगे। अगर खुद हल्के होंगे तो परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी। परिस्थितियों के बारे में एक बात और मैं कह दूं, बाबा के महावाक्य और अनुभव करने वाले हैं, बाबा ने कहा जब परिस्थिति आए तो अपने से पूछा करो, परिस्थिति शक्तिशाली या मैं? तो उत्तर मिलेगा मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मेरे साथ सर्व समर्थ है। और परिस्थितियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? माया है और कागज का शेर, अपनी कमजोरियां, मरी हुई चींटी। बाबा ने कहा कि परिस्थितियां और समस्याएं कमजोर मन की रचना हैं और कुछ भी नहीं। आज जैसे फागी है, तूफान चल रहा, जिसका थोड़ा भी शरीर ढीला हो उसे डर लगता रहेगा, या कोई डर के कमरे में बैठा रहे कि बाहर तो बहुत ठंडी है तो उसको और ठंडी लगती रहेगी, और कोई सोचे अरे सूक्ष्म वतन बना हुआ है आज तो आबो चलो सूक्ष्म वतन में सैर करें, तो उसके लिए आनंदकारी हो जाएगा, ठंडी होगी नहीं। जब तक छुपे बैठे तो ठंडी है, जब मैदान में आ गए तो ठंडी नहीं है। कमजोरी का नाम परिस्थितियां हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा स्वयं हल्के होंगे तो परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी। जहां सरलता है वहीं आत्मा शक्तिशाली है। सरलता कहीं कहीं लोगों को अलबेलापन नजर आती है, कोई व्यक्ति बहुत सरल होता है, अलबेलापन, पुरुषार्थ करने में भी सरल, उठने में भी हल्के, ठीक है उठे उठे, नहीं उठे तो भी कोई बात नहीं, सब में समान, काम किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी हल्के। तो अगर सरलता इसके साथ महान लक्ष्य नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो सरलता अलबेलापन लाती है। और जहां सरलता के साथ दृढ़ता है वहां ये सरलता महानता बन जाती है। तो हमें ये याद रखना हमेशा। तो स्वयं हल्के होंगे, परिस्थिति भी हल्की हो जाएंगी। स्वयं हल्के तो दूसरे भी हल्के, हमसे दूसरे हल्के। और अपने जीवन में हमें एक बहुत अच्छी चीज साथ रखनी चाहिए कि दूसरों से स्वयं हल्के रहना है और अपने से दूसरों को हल्के रखना है। ये जीवन को सुखी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरों को दबा के भी नहीं रखना, स्वतंत्र भी रखना है लेकिन मर्यादित भी रखना है। तो ये श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। स्वयं हल्के होंगे तो शारीरिक बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। एक बहुत अच्छी चीज है ये, सबको बीमारियों से गुजरना ही पड़ता है। तो बीमारी के संकल्प आत्मा को बांध लेते हैं लेकिन खुद हल्के हो गए कि बीमारी तो आई है और चली जाएंगी, आज हैं कल नहीं होंगी, शरीर को हैं मुझे तो नहीं है, मैं इससे अलग हूं, स्वस्थ हूं। दो युग तक, तीन युग तक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना है, इसलिए थोड़ी सी बीमारी तो पिछले हिसाब किताब को पूर्ण करने के लिए आई है। ऐसा सोचकर अपने को हल्का करेंगे तो पाएंगे बीमारी भी जल्दी ही विदाई ले जाएगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, स्वयं हल्के होंगे तो जन्म जन्म के पाप कर्म और संस्कार भी हल्के हो जाएंगे। तो इतना बड़ा फायदा है हल्केपन से। हम हल्के होना सीखें जीवन में, हल्के होंगे तो लगेगा कि सिर पर पापों का बहुत सारा बोझ नहीं है, सब उतर गया है। परिस्थितियों के बारे में मैं एक बात और कहूं, एक बहुत अच्छी चीज है, आप जरा गहराई से समझने की कोशिश करना कि जब जीवन में परिस्थिति आ जाए तो आप उससे कम्युनिकेट न करो, संबंध न करो, संकल्प न चलाओ उसके बारे में ज्यादा, और देखो इसका क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव दिखाई देगा। हमारे अपने ही कमजोर संकल्प उसे और शक्तिशाली बना देते हैं, यही तो होता है ना। तो अगर हम बिल्कुल उससे कम्युनिकेट न करें, उसके बारे में बिल्कुल सोचें ही नहीं, तो वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य हमसे लड़ने आया हो और हम लड़े नहीं, तो क्या करेगा? हम बिल्कुल दृढ़ता ले आए कि हमें लड़ना ही नहीं, तुम्हें जो बोलना बोल लो भाई, बोलो और कुछ। वो जैसे बोलता था ना श्री कृष्ण को, कौन था वो सौगाली जी, शिशुपाल, शिशुपाल बोलता था ना कि बोलो और क्या बोलना है। तो बोलते बोलते ही जब हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, उसको कुछ उत्तर ही नहीं मिलेगा तो बोर हो जाएगा ना, गुस्सा भी आएगा कभी ज्यादा, लेकिन गुस्सा आके बोर हो के उसके अंदर का सारा गुब्बार निकल जाएगा और परिस्थिति आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ भी कह सकता है। तो हम सभी को अपने जीवन में कर्म योगी बनना है, और कर्म योगी बनने के लिए कुछ थोड़ी सी धारणाएं और अपने पास रखनी है। बाबा ऐसे तो रोज मूल्यों में बताते ही हैं। पहली अंतर्मुखता, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी है ना, कम बोलना, मनन चिंतन में रहना, कर्मेंद्रियों की बाह्य मुक्ता को अंतर्मुखी करना। जिन्हें भगवान मिला हो, अगर लोग उसे बहुत बोलता हुआ देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ना इतनी बड़ी प्राप्ति नहीं हुई, भगवान मिल गया होता तो ये मग्न हो गए होते, मगन, खोए हुए। और जिसको इस तरह का नशा हो, उसको अंतर्मुखता के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए अंतर्मुखता योगियों की शोभा है। बाबा कहा करते थे, अंतर्मुखता योग के लिए गुफा है, जिसमें बैठकर योगी तपस्या कर सकता है, एकाग्रचित हो सकता है, रिसर्च कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, क्या होता है उससे नुकसान? एक तो उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और दूसरे थोड़े ही समय में लोग पहचान लेते हैं ये कैसा व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, उसका प्रभाव भी रहता, उसकी गहराई का पता भी नहीं चलता। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी पर्सनालिटी को लूज कर देता है, जैसे खो देता है, उसको धूमिल कर देता है। ज्यादा बोलने से न केवल शक्तियां नष्ट होती है, संकल्प की गति भी तेज चलती है, जिसके कारण श्रेष्ठ चिंतन करने की शक्ति बचती नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति बाह्यमुखी है उससे श्रेष्ठ चिंतन नहीं होगा। तो इस तरह अंतर्मुखी होकर हम सभी को एकाग्र चित्त होने का भी अभ्यास करना चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संगम युग के समय पर हम एक विशेष कार्य के लिए भी बाबा के पास आए हैं, और वो है बुद्धि की सफाई। तो सभी अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखने का लक्ष्य बनाएं, बुद्धि में और कुछ किचरा न डालें। किचरा पड़ता रहता है, कुछ देखा बुरा, कुछ बुरा सुना, कुछ पर चिंतन किया, व्यर्थ संकल्प चले, ये किचरा हम अपनी बुद्धि में न डालें, बुद्धि को साफ करते रहें, तो हम जल्द ही स्थिर चित्त हो जाएंगे। तो एक सबसे अच्छी बात हमारे इस जीवन के लिए स्वचिंतन, कर्म योग स्वचिंतन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इस संगम योगी जीवन में जो व्यक्ति स्वचिंतन करना जानता है, उसके लिए निरंतर प्रगति का मार्ग खुला रहता है। हम चिंतन करें स्वयं से कि कितना सुंदर समय है हमारे लिए, जबकि भगवान भाग्य विधाता बनकर हमारे पास आया है, भाग्य बांट रहा है, खुले हाथ भाग्य दे रहा है, ऑफर कर रहा है, जितना चाहे ले लो। पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाने का सुंदर अवसर हमारे हाथ में आ गया है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, बच्चे अपने भाग्य को देखो, भगवान स्वयं तुम्हारे हाथ में आ गया है। साकार में बाबा ने कहा कभी, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। तो जिसकी मुट्ठी में भाग्य विधाता हो उसका भाग्य कैसा हो जाएगा, हम चिंतन करें। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता जिसका अपना हो, तो वो अगर उससे संपूर्ण भाग्य न ले पाए तो अंत में पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और बाबा को वो प्रिय नहीं होगा, न हमें प्रिय होगा। भाग्य विधाता भी देखेगा कि मेरे अपने बच्चे, वारिस बच्चे पश्चाताप की लाइन में खड़े हैं, दूसरों ने भाग ले लिया और ये जो बहुत समय पहले मेरे पास आए थे ये अनेक तरह के भाग से वंचित रह गए। तो हम अपने भाग्य का ऐसा निर्माण करें, क्या क्या हो हमारे भाग्य में सोचो। अब जरा एक नई बात, श्रेष्ठ भाग्य तो हो लेकिन उस श्रेष्ठ भाग्य में सदा ही संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता, सर्वश्रेष्ठ चरित्र, सर्व शक्तियों से संपन्न जीवन, ज्ञान के खजाने से भरपूर जीवन, मन सदा आनंदित, बुद्धि सदा स्वच्छ, तन मन धन सब परफेक्ट, ऐसा स्वास्थ्य हमें चाहिए, ऐसा संपूर्ण भाग्य हमें चाहिए। इसके लिए हमारे पास विधि है और इस जीवन को हम जैसा बनाएंगे, ये जीवन बीज है हमारे 84 जन्मों का, वैसा ही भाग्य हमें प्राप्त होता रहेगा। तो हम कुछ ऐसे संस्कार अपने लिए चुन लें, ये स्वचिंतन का विषय है, कुछ ऐसे संस्कार अपने लिए चुन लें जिन्हें हम जन्म जन्म अपने जीवन में साथ चलाना चाहते हैं। कैसे होंगे वो संस्कार? सरल संस्कार, सुखदायी संस्कार, संतुष्टता के संस्कार, कुछ भी न मांगने के संस्कार, श्रेष्ठ चरित्रवान रहने के संस्कार, और बोलो गौरवशाली जीवन जीने के संस्कार। नहीं, कुछ हैं गुण और कुछ हैं संस्कार, सब कुछ अधिकार से प्राप्त करने के संस्कार और सहयोगी बनने के संस्कार यानी दातापन के संस्कार, और बोलो स्वच्छता का संस्कार, रॉयल्टी का संस्कार। तो इन सब संस्कारों की एक लिस्ट बनाकर हम अपने जीवन में इनको समाते चलें, अच्छी तरह समाएं। और संस्कार कैसे बनते हैं? न केवल कर्म से, चिंतन से। जैसे संकल्प वैसे संस्कार, ज्ञान की दृष्टि से हम दूसरों को समझाते हैं, जैसे कर्म वैसे संस्कार, पर कर्म का आधार भी संकल्प, चिंतन। तो जिस तरह का हमारा चिंतन होगा, जिस तरह के संकल्पों को हम अपने अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरह के संस्कार हमारे अंदर भर जाएंगे। विशेष रूप से इस समय हम बाबा को पाकर उसकी सब प्राप्तियों से स्वयं को संतुष्ट कर लें तो हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे। अब हमारा ये महान आत्माओं का परिवार है, चुनी हुई आत्माएं हैं, इन सब के लिए हम सुखदाई बन जाएं तो जन्म जन्म ये भी हमारे लिए सुखदाई बनी रहेंगी। अब हम दातापन के संस्कार बढ़ाएं, ज्ञान भी दें, शक्तियां भी दें, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दें, शुभ भावनाओं का दान दें, तो इस दातापन के संस्कार के बदले हमें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा। बाबा ने कहा द्वापर युग के बाद दान के आधार से, दान पुण्य के आधार से राजाई मिलेगी। दान पुण्य कौन करेंगे? हम सब जिन्होंने इस समय दातापन के संस्कार भर लिए। तो इस तरह श्रेष्ठ संस्कार रिकॉर्ड करने का, बीज डालने का समय चल रहा है। हम बीज डालते रहें, पानी देते रहें, उसकी पालना करते रहें, बार बार बीज डालें, बार बार संकल्प क्रिएट करें और उन संस्कारों को प्रैक्टिकल में ले आए जीवन में। हमें दिखने लगे कि हमारे अंदर ये संस्कार भर गए हैं तो 84 जन्म वरदानी बन जाएंगे, किसी भी जन्म में हमें किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ अभाव महसूस नहीं होगा। तो बार बार स्वचिंतन के द्वारा अपनी उमंग उत्साह को बढ़ाएं कि भगवान सब कुछ देने आया है, अगर ये समय भी हमारे हाथ से निकल गया तो जन्म जन्म मांगते ही रहेंगे उससे। और जिसने इस समय उससे सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसे भक्ति में भी उससे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।